क्लिप नंबर 166। इस क्लिप में आप सूरह निसा का तारुफ और पहली आयत का तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे।
सूरह निसा का तारुफ। मकाम नुजूल। सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। आयात, कलिमात और हरूफ की तादाद इसमें 24 रुकू, 176 आयतें, 3045 कलमे और 16030 हरूफ हैं। निसा नाम रखने की वजह, अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। सूरह निसा के फजाइल। सूरह निसा की एक आयत मुबारका के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, हालांकि ये तो आप पर नाजिल फरमाया गया है। इरशाद फरमाया, हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। चुनाचे मैंने सूरह निसा पढ़ी हत्ता के जब मैं इस आयत पर पहुंचा,
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا।
ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے؟ तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफी है। मैं हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवा है। नंबर दो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तला अनहो फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फर्ज उलूम बयान किए गए हैं। नंबर तीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। नंबर चार, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह तआला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। सूरह निसा के मजामीन। इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक और उनसे मुतालिक अहकाम बयान किए गए हैं। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया, ना समझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया, और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाएं तो उनका माल उनके सिपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वईद बयान की गई। इसी तरह औरतों का मेहर उन्हें देने का हुक्म दिया गया और मेहर से मुतालिक चंद और मसाइल बयान किए गए। मीरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकरर किए गए। उन औरतों का जिक्र किया गया जिनसे नसब, रजाअत और मुसाहरत की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है, और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया। इसके अलावा सूरह निसा में ये मजामीन बयान हुए हैं। नंबर एक, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों और लौंडी गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया। नंबर दो, मीरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए। नंबर तीन, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा मकबूल नहीं की जाएगी। नंबर चार, शोहर बीवी के एक दूसरे पर हुकूक और अज़दवाजी जिंदगी के रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। नंबर पांच, माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए। नंबर छह, कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई, हसद से बचने का हुक्म दिया गया, नीज तकब्बुर, बुखल और रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई। नंबर सात, जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए। नंबर आठ, कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया है। नंबर नौ, नेक आमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। नंबर दस, अखलाकी और मुल्की मामलात के उसूल और जंग के बाद अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर ग्यारह, मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर खास यहूदियों के खतरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। नंबर 12, इस सूरत के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है।
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے.
یا ایہا الناس،
اے لوگو، اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا ہے. کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں. ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا. اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا. نمبر دو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا. نمبر تین، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا. نمبر چار، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتے داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا.